चलिए एक रिवायत लीजिए, बहुत ही प्यारी रिवायत है, सही रिवायत है, सिलसिला तो सहीहा की 277। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस आदमी की फिक्र आखरत की हो, अल्लाह ताला इसके कामों की शेराजा बंदी करते हैं। इसको बार बार सुनिए, हर हदीस में ये जुमला आ रहा है, यानी सॉर्ट आउट होती है शेराजा बंदी, समझते हैं, ऑर्गेनाइज्ड। उसका वक्त बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, उसका पैसा बहुत ऑर्गेनाइज्ड, उसकी स्किल्स बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, यानी वो वेस्ट नहीं करता खुद को किसी भी वक्त में कि मैं बस ये दुनिया लेने के लिए आखिरत को छोड़ दूं। इसके दिल को गनी कर देता है और दुनिया जलील होकर इसके पास आ जाती है। और जिसका हदफ दुनिया हो, अल्लाह ताला इसके मुनाफों को यानी बेनिफिट्स का शेराजा मुंतशिर कर देता है। प्रॉफिट होता तो है, समझ नहीं आता जाता किधर है, पे चेक आता जाता किधर है ये नहीं पता चलता। कागजों में तो बहुत नफा लिखा जा रहा है, हाथों में जेब में 100 रुपए भी नहीं है, ये नुकसान होता है। और इसकी फकीरी को इसकी पेशानी पर रख देता है। और इसके पास यानी ये आखिरी जुमला नया है, पिछली बार तो आपने हदीस में पढ़ी पहले भी, ये जुमला नोट कीजिएगा, इतना कुछ होने के बाद भी इसके पास दुनिया भी इसके मुकद्दर के मुताबिक ही पहुंचती है। करो कोशिश जितनी मर्जी, मिलना वही है जो रब ने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद शऊर से दुआ मांगते हैं, रिस्क की दुआओं में से खूबसूरत दुआ जो अल्लाह ने सूरत कसस आयत 24 में हमें सिखाई, रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ए मेरे रब, आप जो भी खैर मेरी जानिब नाजिल फरमाएं, बिला शुबाह मैं इसका मुख्ताज हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ थी, जो मिस्र से मदियन हिजरत करने के बाद ना रोटी थी पास, ना कपड़ा, ना मकान, है ही कुछ नहीं, और कत्ल का इल्ज़ाम भी है, मुहाजिर हैं और बग़ैर वीज़े के पेपर्स के किसी मुल्क में बैठे हैं, समझ नहीं आ रही जाऊँ किधर, ये दुआ मांगी थी उन्होंने। लड़कियों की खिदमत करके कुएं की दीवार से टेक लगाई, अब जाऊं किधर। आप कभी नए शहर में गए और आगे कोई आपको जानता ही नहीं है, एयरपोर्ट से बाहर निकले तो कोई लेने ही नहीं आया, अब क्या करें, ये दुआएं मांगिए, रब्बी नीली मान जल तलई यमिन खैर इन फकीर। और मुफसरीन कहते हैं कि ये दुआ बंदा कब मांगे, जुमला लिखिए, जब समझ ही ना आए क्या मांगू क्या छोड़ू। और कभी कभी जिंदगी में ऐसे बंद दरवाजों से इंसान गुजरता है, वो एक चीज खराब होती है ना फिर सारी खराब होती है, तन्हाई भी है, जुदाई भी है, जॉब भी चली गई, घर भी अपना नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, छत नहीं, रोटी कपड़ा मकान का मसला। अल्लाह कहते हैं, मांगो रब्बी नीली मान जल्द इलई यमीन खैर इन फकीर। अल्लाह जो भी खैर तू मेरी तरफ डालेगा ना मैं ले लूंगा, फकीर होता है ना आप उसको टूटी हुई रोटी भी देंगे तो ले जाएगा, क्योंकि उसके पास रोटी नहीं है। तो दिल से मांगिए कि अल्लाह मेरी नजरें इस दुनिया से थोड़ी सी ऊपर करके आखिरत पे लगा दें। आप जरा सी एक एक्टिविटी कीजिए, अभी मैं भी अपने लैपटॉप को देख रही हूँ, आप भी अपने कंप्यूटर से देख रहे होंगे, मैं सीधा देखूंगी तो मुझे लैपटॉप दिख रहा है, और मैं जरा सा ऊपर देखूंगी ना, अभी कर रही हूँ साथ साथ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा हेवला सा दिख रहा है लैपटॉप का, लेकिन ऊपर भी दिख रहा है। ये कीजिए, ये भी नहीं कि मैं अब सारा सर बिल्कुल ऊपर करके अब मैं छत को देख रही हूँ, अब मुझे नीचे कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे चलेंगे तो गिर जाएंगे। तो ये नहीं है कि दुनिया पे नहीं नजरें लगानी, दुनिया हैवला साइड इशू और आखिरत पे नजरें। जैसे ड्राइवर आखिरी बात करके अगली कुंजी खोलते हैं, ड्राइविंग करते वक्त ड्राइवर कहाँ देखता है, बिल्कुल नीचे नजरें करके अपने स्टेयरिंग को देखे, इमेजिनेशन में लाएंगे तो किसी अगली गाड़ी से टक्कर होना 100% लाजमी है, थोड़ा सा उससे आगे बढ़े तो गाड़ी के बोनट को देखता जाए तो भी यही अंजाम होगा, और उसके बाद बिल्कुल अपनी गाड़ी के आगे जो जगह है उस पे देखे तो भी अंजाम यही होगा, और इसकी बजाय गाड़ी की बजाय ऊपर छत को देखे या आसमान को देखे तो भी अंजाम यही है, आगे आए घड़े को नहीं पहचानेगा, अगली गाड़ी को नहीं पहचानेगा, रोड क्रॉस करते हुए को नहीं पहचानेगा। बेहतरीन ड्राइविंग स्किल किसकी है, गाड़ी को हाथ में ले, स्टीयरिंग कंट्रोल में है, ब्रेक पे पाँव है, एक्सीलेटर भी पास मौजूद है, एहतियातन हैंड ब्रेक भी साथ ही है, और नजरें सीधी अपनी गाड़ी से अगली गाड़ी के इन बिटवीन। ये मैंने कभी ड्राइविंग की स्किल ली होगी तो मुझे याद आ गई, ये ले लीजिए, गाड़ी चलाती नहीं हूँ स्किल्स आ गई। बेस्ट ड्राइवर कौन है, अपनी गाड़ी और उससे अगली गाड़ी है या जो साइकिल है या वो, उनके इन बिटवीन देखे, तभी तो फिर वक्त से पहले हैंड ब्रेक लगाएगा, स्पीड स्लो करेगा। सर पे आई गाड़ी को देख के अगर आप हैंड ब्रेक लगाएंगे तो झटका लगेगा, वल्ला ही ये झटका उन लोगों को लगेगा जिनकी नजरें दुनिया पे थी और मलकुल मौत अचानक आ गया, और रोएगा लौला खरतनी ला जलिन करीब, सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयतें। ऐ मेरे मालिक, इतनी जल्दी क्यों भेज दिया फरिश्ते को, थोड़ा सा तो रुक जा, तो अल्लाह ना करे कि मौत का फरिश्ता आ जाए, गरगरा लग जाए, मौत की हिचकियां शुरू हो जाएं और हम कहने लगे माली माली, अल्लाह थोड़ा सा रुक जा, ये माल उसको दे उसको दे, और पता नहीं कितने लोगों के साथ मेरी डीलिंग रॉन्ग थी, उनसे माफियां मांगो, तो अल्लाह ताला आपकी मेरी सलाह फरमा दे। इसको जज्ब कीजिए चंद सेकंड, अपने लिए दुआ कीजिए, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, फकीर बन जाइए, मांगे दुआएं। आपको तो इल्म की महफिल में दुआएं बहुत कबूल होती हैं। ऐ मेरे मालिक, जो कमी है ना पूरी कर दे, आज ही से दुआ करें, अल्लाह मैंने रमजान के जितने प्रोजेक्ट सोचे अल्लाह मुझे पता भी ना चले और ये तू करते, मैं तो ऐसे ही बैठूंगी, अल्लाह तू करा दे, अल्लाह मैं तो बस ये काम करने की नियत करता हूँ, फिर तू करा दे, करके देखिए, अल्लाह की कसम खानी तो नहीं चाहिए। लेकिन इस बात पे यकीन कीजिए, जब आप अपने कामों का सिरा अल्लाह के हाथ में देते हैं ना, सजदे में रोइए, देखिए अल्लाह आपसे कैसे लेता है काम। ये कोई बंदा थोड़ी बोलता है, ये बंदा थोड़ी सुनता है, ये कोई इंसान के बस में मशीनें थोड़ी हैं आपके मेरे, एक सेकंड लगता है सब बनी बनाई बसात गिर जाती है। तो आज से अल्लाह से कहिए कि अल्लाह मैं जो कर रही हूं आखिरत के लिए करूंगी, मेरी नेकियों के बदले दुनिया में नहीं मुझे आखिरत में चाहिए, और दुनिया में वो देता है तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत खैर मिलेगी। और आज उम्मत को ये सबक पढ़ाने की बहुत जरूरत है, जितनी गाड़ियां बाहर रोड पे दिखती हैं सुबह उठते ही, ये किधर जा रहे हैं, स्कूलों के वक्त पे, जॉब्स के वक्त पे, ट्रैफिक आवर्स, सबको पता है हर मुल्क का मुख्तलिफ होगा, 7 से 9 के बीच में ही होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मर्द काम पे जा रहे हैं, खवातीन भी जा रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, और फजर के वक्त क्यों नहीं ट्रैफिक आवर्स, उस पे क्यों सब सोए हुए हैं, क्योंकि नजरें दुनिया की बजाय आखरत पे। तो आज दिल से ये दुआ मांगिए, मैं तो अपने लिए भी आपके सामने ही मांग लेती हूँ, के मालिक, ऐ मेरे मालिक, मेरी नजरें इस दुनिया से उठा के आखिरत पे लगा दें, क्योंकि असल प्रॉब्लम ही है, जैसे वो डॉक्टर को मेन बीमारी दिख जाती है ना जिस्म में, तो वो फिर छोटी छोटी चीजें नहीं कहता कि इसको नजला और जुकाम खांसी हो, कहता है अंदर बड़ी गड़बड़ पड़ी हुई है, लंग्स खराब है। आज हमारे लंग्स खराब है जो सिर्फ इस दुनिया के इस ऑक्सीजन को लेने की कोशिशों में आखिरत में दम घुटाए बैठे हैं, और अल्लाह करे ये बात समझ आते, यकीन करे जैसे ऑक्सीजन हट जाए ना, कोई ऑक्सीजन मास्क पे और उसका जरा सा हिल जाए ना, तो जो वो उसकी हिचकियां है ना, आज इंसानियत की वो हिचकियां आप महसूस कर सकते हैं अगर अल्लाह ने आपको थोड़ी सी बसीरत दी है। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इन बातों को सुन के समझना आसान करते हैं। अगली चाबी खोलिए, वो चीज जो रिस्क लेकर आती है, अल्लाह की किताब पर अमल करना। अजीब नहीं लगा आपको ये जुमला, हम तो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह की किताब पर अमल करने से तो रिस्क चला जाता है, मौलवी बन जाएंगे और गरीब और बस कुछ भी तो नहीं, आज कैसे तौबा करो, ना ना ना, अल्लाह की किताब तौबा करो जी, फिर तो लोग ही नहीं खुश होते, बेटियों के रिश्ते कहाँ से आएंगे, और सो ऑन। रिस्क के असबाब में से एक ये है कि अल्लाह ताला की नाजिल करता किताब पर अमल किया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, ये इतना बड़ा मुतालबा है जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, बंदों को ये सजता नहीं है, चाहे वो किसी मुल्क का वजीर आजम हो, उनको नहीं सजता कि जो कानून हम बनाते हैं वो मानो। और शायद ये बात समझाने के लिए आज सुबह मुझे किसी ने बहुत ही ऑथेंटिक, और अगर आपको दलील चाहिए तो मैं उन्हीं कहूंगी कि वो जो बात सुनी है कही उसका लिंक दे दें, दुनिया के एक बहुत बड़े मुल्क, मारूफ मुल्क के किसी बड़े ने शायद कोई ऐसी बात कही है, और ये कहती कि मैंने अपने कानों से सुनी है इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ, कि वो अपने मुल्क के बारे में परेशान है कि यहाँ मौजूद मुसलमानों में से अभी भी कुछ परसेंट, 20-25, अल्लाह के कानून की बातें करते हैं और वो गॉड की बात को हमारे कवानीन पे तरजीह देते हैं, तो अब हमारा अगला गोल यह है कि इनको ख़त्म किया जाए या वट एवर, इन सब को हमारे मुल्क के कवानीन को मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर जाएं इधर से। बात कुछ इसी किस्म की थी। और याद रखिए, आपके मेरे बच्चों के लिए जो अगली दुनिया तैयार हो रही है वो ऐसी नहीं है जो आज है। इवन वो दुनिया में तो पता नहीं ये बच्चे कैसे जिएंगे। क्या आज हम इर्द गिर्द दौरे हाजिर में फितने क्या देख रहे हैं, और अगले 5 साल के बाद और 10 के बाद क्या होने वाला है। अल्लाह बस बचा के रखे, हमारी हिफाजत करे। तो लोग बुरा मनाते हैं, बिल्कुल फिरौनियत जैसे, वो कहता था ना रब्बुकुम अलअ, उसने जादूगरों से क्या सवाल किया था कि तुम किसको रब कहते हो, मैं हूं रब ना रब्बुकुम अलअ। तो फिरौन ने जो बात कही थी आ उस दौर में गैर मुहज्जब तरीके से, आज उसको बड़े मुहज्जब और बहुत डिसेंट तरीके से दुनिया में डाला जा रहा है। हमारा मुल्क, हमारे कानून, हमारा लॉ, और हम मुसलमान गूंगे बहरे बनकर फिर मानते क्या करें, लीगल होना है, नाजायज काम तो करने भी नहीं है। लेकिन क्यों हम मुसलमानों ने अभी तक अल्लाह का कानून ना दिया, इसकी वजह आपके सामने लिखी हुई है कि हम खुद अल्लाह की किताब पे अमल नहीं करते। अफतूमिनू नबी बाद दिल किताब व तकफुरू नबी बाद, तो दिल को यकीन दिलाइए, रिस्क की कुंजियों में ये कुंजी है, क्या आप अल्लाह की किताब पर अमल कीजिए और इसके दलाइल ले लीजिए, आपके सामने है अल्लाह ताला क्या फरमाता है। और अल्लाह ताला का फरमान सारी दुनिया की बातों के कहने सुनने से बड़ा। सूरत माईदा आयत 66 नंबर नोट कर लें, आयत बाद में जाके नोट कीजिएगा। वलौ अन्नहुम अकामु तौरात वल इंजील वमा अंसिल इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फौकिहिम वमिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदतुम वकसीरुम मिनहुम सा मा यअमलून। अब देख लीजिए, अल्लाह अहले किताब ही की तस्करे को लाते हैं, और बिला शुबा अगर वो यानी अहले किताब यहूद और नसारा मुराद है, तौरात और इंजील को और इसे जो इनके रब की तरफ से इन पर नाजिल किया गया कायम करते, तो वो यकीनन अपने ऊपर से और अपने कदमों के नीचे से खाते। इनमें से एक गिरोह राह एतदाल पर है और इनमें से बहुत सारों के करतूत बुरे हैं। तो क्या पता चला, कैसे लोग जो अल्लाह के नाजिल करदा कवानीन के मुताबिक जिंदगियां बसर नहीं करते, अल्लाह ताला फिर उनके साथ क्या मामला करते हैं जो आज हो रहा है। और अगर इस पे अमल करते लअकलू मिन फौकिहिम, ऊपर से भी रिस्क बरसता, नीचे से भी बरसता। ये तो मुसलमानों ने खुद ही ऊपर नीचे के रास्ते बंद किए हुए हैं शरीयत के निफाज से रुककर। आज करके देखिए क्या होता है। तो नेक्स्ट, ये दलील बहुत बड़ी है, इस पे मुफस्सरीन क्या कहते हैं। इमाम तबरी कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने अहले किताब यानी मुराद अहले किताब है, उन्होंने अल फुरकान यानी कुरान करीम पर अमल किया जो इनकी जानिब नाजिल किया गया और जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, यानी उन्होंने फुरकान पर अमल नहीं किया। इसी तरह एक और कौल है कि जो इनके रब की जानिब से इन पर नाजिल किया गया यानी कुरान मजीद, जो कि इन किताबों की तस्दीक करने वाला है। अब सवाल यह कि तौरात और इंजील और कुरान, तीन किताबों के नाम इकट्ठे आए हैं, इनको कायम करने से क्या मुराद है? क्योंकि कायम से मुराद ये तो नहीं है कि इसको चूमा जाए, बड़े खूबसूरत गोटे लगे हुए कवर में डालकर बेटी को जहेज एडिशन दिया जाए और बेटी की शादी के मौके पर सर पे रखा जाए, उसकी साय में गुजारे, क्या ये मुराद है कुरान को कायम करने से? नहीं, हमने यही समझा। आज हमने कुरान की बस इतनी ही तकरीम की, ताकों में सजाया जाता हूं और इस तरह की कुरान की फरियादें आपने सुनी होंगी। सोचिए, सुनिएगा कि क्या मुराद है कुरान को कायम करने से। आज के दौर में तो हम तो कुरान ही की बात करेंगे ना। इमाम मुजाहिद कहते हैं कि इनका तौरात कायम करना इसके मुताबिक अमल करना है, यानी किसी किताब को कायम करेंगे आप तो मुराद है कि उस पर अमल कीजिए। इसी तरह इमाम तबरी कहते हैं कि अगर वो जो कुछ तौरात और इंजील में है इस पर अमल करते और जो कुछ इन पर यानी अल फुरकान कुरान पाक में नाजिल किया गया इस पर अमल करते, आपके लिए बस इतना ही काफी है कि कायम करने से मुराद है कि उस किताब पे अमल किया जाए। नेक्स्ट, एक और तारीफ लिखी है शेख अल जजायरी ने, कहते हैं कि इन किताबों के कायम करने का मानी ये है कि वो इनमें मौजूद दुरुस्त अकायद पर ईमान लाए और सही शरीयतों, बुलंद आदाब और उम्दा अखलाक पर अमल पैरा हुए। मुराद क्या है? عقیدہ درست ہو، شریعت کی پابندی ہو، اخلاق بڑے بلند ہوں اور اخلاق بڑا عمدہ ہو، آپ کے میرے لیے چیک لسٹ ہے۔ اگر یہ چار چیزیں ٹھیک ہیں تو الحمدللہ آپ بھی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں اور آپ نے اس کو اپنے جسم پہ قائم کیا ہوا ہے، اور اگر نہیں کیا تو پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک اور تعریف لیجئے، شیخ یحییٰ بن عمر اندلسی کہتے ہیں، اگر اہل کتاب تورات، انجیل اور قرآن کریم میں نازل کردہ احکام کی تعمیل کرتے تو وہ اوپر نیچے سے کھاتے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا ان کے حوالے کر دیتے۔ آپ ایک حد لگائیے، اپنے ملک میں 40 سال کی بارش سے زیادہ نفع ملتا اس ملک کو؟ اپنے پیارے ملکوں کی اصلاح کا ایجنڈا ہے، اللہ کرے یہ بات کسی کو پہنچ جائے۔ آج شریعت کا نفاذ کیجئے، دیکھیے آپ کے ملک سے غربت جاتی ہے کہ نہیں، مہنگائی جاتی ہے کہ نہیں، جہالت جاتی ہے کہ نہیں۔ جس نے دنیا بنائی اس نے دنیا چلانے کے قوانین بھی دیے۔ آپ ایک بلینڈر لے کر آتے ہیں نیشنل کمپنی کا یا کسی اور کا، کیا ریڈ می بیفور یوز نہیں پڑھتے؟ اس بکلٹ کو نہیں کھولتے اور کھول کے اس کو چومیں چاٹیں اور بالکل اون کے اوپر لگا دیں تو کام ہوگا؟ 220 کے سوئچ کو 420 میں ڈالیے، ایک دم بلنڈر ہوگا اور وہ پھٹ جائے گی، جل جائے گی۔ آپ مشین لے جائیے کمپنی کے پاس کہ آپ نے تو بڑی خراب مشین بنائی، گھر جاتے ہی جل گئی۔ کیا کیا تھا آپ نے؟ کہتا جاتے ہی دھویا۔ کہا دھویا اس کو؟ یہ دیکھیے تھنگس ٹو ڈو میں اس کو پانی نہیں لگانا تھا۔ پھر کیا کیا؟ اس کو سوئچ میں ڈالا تو آگ نکلی۔ یہ دیکھیے پڑھیے آپ نے غلط سوئچ میں لگا دیا۔ اتنی بات تو سب کو سمجھ آتی ہے، قرآن کے بارے میں کیوں نہیں سمجھتا آج کا مسلمان؟ میں کیوں نہیں سمجھتی میری زندگی میں کیا ہو گیا؟ آج ہم مسلمان 2+2 جانتے ہیں، ABCD جانتے ہیں، ہمٹی ڈمٹی ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل سٹار ان کو پڑھایا جاتا ہے، یہ سبق کون پڑھائے گا کہ اپنے جسم، اپنی زندگی، اپنی رشتے ناتوں، اپنے لائف سٹائل میں اس کتاب کو ڈالو؟ یہ کہتے ہیں یہ قرآن کلاس میں پڑھیں گے، وہ باجی بہت اچھا پڑھاتی ہے نا، وہ ان سے سیکھیں گے جا کے۔ تو یہ شادی میں آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیجیے، اس پہ نہ بات کریں، ستو پتوا، قرآن کو گھر میں نہ لائیں، شادی میں قرآن کیا؟ اور پلیز پلیز آپ اتنے ریجٹ نہ ہو، بس اتنے ہی کافی، جائیے وقت پورا ہو گیا۔ یہ مشورے ہیں لوگوں کے آج کے دور میں اس قرآن کے بارے میں۔ تو دعا کیجیے کہ اس زبان سے حق نکلے لیکن نرم آواز میں نکلے۔ آج حق پیش کرنے والوں کی آوازیں بڑی سخت ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، اور نرم زبانوں سے لوگ آپ کو شیرین قسم کا زہر کھلا جاتے ہیں، اور عام مسلمان فتوے لے لے کے پھرتے ہیں کہ فلاں نے اس کو جائز کہہ دیا تو فلاں نے اس کو۔ دا بیسٹ کمبینیشن کسی بھی مبلغ کے لیے کیا ہے؟ بات اگر کڑوی ہے، حق ہے، انداز نرم رکھیے۔ ڈاکٹر بھی انجیکشن لگاتے وقت ہاتھ بھاری رکھے تو سوج جاتی ہے بازو۔ تو آج ہم دین والوں کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کو لوریاں دیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ کر لو بس، وہ کرنا تو بچ جاؤ گے۔ کوئی ڈاکٹر انجیکشن میں دوا کی جگہ پانی ہی بھرتا جائے، کڑوی دوائی کی بجائے اس کو گلوکوز کی گولیاں کھلاتا جائے تو شفا ہوگی؟ تو آج کے دور میں ان لوگوں کی بات نمبر ایک جو دین کی بات ہے سچ پر اس کو کڑوے انداز سے بیان کرتے ہیں، ان کی مثال ہے۔ پر دوسرے بھی ہیں جو ڈائلیوٹ ہی کرتے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک۔ دعا کیجئے کہ ہم سے وہی بات ٹھیک نکلے جو اللہ نے ٹھیک کہی اور جس کو اس کے رسول نے ٹھیک کہا، اور صرف لوگوں میں پاپولیرٹی لینے کے لیے اور شہرتیں پانے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کی نظروں سے گر نہ جائیں۔ چلیے ایک اور تعریف دیکھیے، سید قطب کہتے ہیں، اب یہ قائد کی تفسیریں ہیں تو بہت ساروں میں سے دو چار آپ سے شیئر کر رہے ہیں، وہ بھی بوجھل لگ رہی ہیں، لیکن بات تو وہ ہے جو قرآن سنت کی لوگوں نے حق کے ساتھ سمجھی۔ میری کیا اوقات کہ میں اپنے پاس سے کوئی بات کروں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اہل کتاب کے ساتھ یہ شرط ان کے ساتھ خاص نہیں، اس شرط کے تو وہ لوگ زیادہ مستحق ہیں جن پر قرآن کریم نازل کیا گیا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کے دین میں تو واضح طور پر حکم ہے کہ وہ اپنی جانب نازل کردہ کتاب اور اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لائیں۔ سارے وطن اسلامی میں بھوک، بیماری، خوف اور تنگ دستی میں مبتلا مسلمان اللہ تعالیٰ کے اہل کتاب کے ساتھ اس مشروط وعدے سے فیض یاب ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مشروط وعدہ قائم ہے اور اس کی جانب راہ معروف ہے، کاش کے وکل کریں۔ یہ آخری جملے تھے آپ کے میرے مطلب کے، कि जब अल्लाह अहले किताब को ये कहता है कि अगर तुम दीन पे अमल करोगे तो ऊपर नीचे से रिस्क मिलेगा, तो क्या अल्लाह मुसलमानों को नहीं ये वादा देगा? तो फिर आज हमारे मुल्कों की भूख, बीमारियां और खौफ और तंग दस्तियां कब दूर होंगी? जब हम अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला ने अहले किताब के लिए ये बयान फरमाया कि अगर वे तौरात और इंजील और कुरान करीम की बात पर अमल पैरा हो जाते तो वह इनके लिए ऊपर नीचे से रिस्क के दरवाजों को खोल देते। अहले इस्लाम के लिए भी यही वादा है कि अगर वो अल्लाह ताला के अपनी तरफ नाजिल करदा कलाम पाक यानी कुरान मजीद पर अमल करने लग जाएंगे तो वह इनके लिए जमीन व आसमान से अपनी बरकतों और रहमतों से रिस्क की फरावानी फरमाएंगे। तो क्या सीखा? चलिए अब एंड पे आते हैं इस बात के, कुरान फहमी की जरूरत और अहमियत। शायद आपका मेरा इस साल कुरान पढ़ना और उसका फहम लेना और उसको समझ जाना हमारे घर की गुर्बत दूर कर दे, हमारे माल में बरकत दे दे। घर छोटा था कल बड़ा होगा। एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल पढ़ रही थी कि कैसे एक माँ अपने बच्चों को लेकर बैठती थी और हर इफ्तारी के वक्त एक दुआ कराती कि अल्लाह हमें वो घर दे जिसके आगे नहरें बहती हों। बच्चों को दुआओं में भी शामिल कीजिएगा इस साल मगरिब के वक्त पे, ताकि उनको भी शऊर आए कि इस वक्त पकौड़े समोसे छोड़े वो मांगिए जो हम अपनी कोशिशों से नहीं ले सकते। और वाकई फिर रमजान के बाद अल्लाह ने उनको ऐसा घर दे दिया कि जिसके सामने बिल्कुल मस्जिद थी। तो काम ने तो बाग मांगा था, दरिया नहरें मांगी थी, तो ये तो मस्जिद है। तो उन्होंने कहा कि मस्जिद वो जगह है, वो नहर है जिसमें दिन में 5 बार नहाने के बाद बंदे के जिस्म पे गुनाह नहीं रहते। तो जरा से यकीन को बढ़ाकर अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ताला बहुत देगा। और मैं भी आपके लिए और आप भी दुआ कीजिए मेरे लिए कि अल्लाह ताला हम पे रहमतें कर दे। किस चीज़ की ज़रूरत है? कुरान फहमी की। इसका फहम लीजिए, खाली बहुत पढ़ लिया, हिफ्ज़ भी किया बहुत, लेकिन मानी पे गौर नहीं है। और कुरान पाक के बारे में इस उम्मत से पूछा जाएगा, फस्तमसिक बिल्लज़ी यूहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 43, 43 से 44 है। ऐ पैगंबर, तुम बहरहाल इस किताब को मजबूती से थामे रहो जो वही के जरिए से तुम्हारे पास भेजी गई है। यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। हकीकत यह है कि ये किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है और अन करीब तुमसे इसके बारे में सवाल होगा। तो ये आयत अपने दिल के अंदर रख लीजिए। देखिए कुरान बहुत प्यारी चीज़ है, इसमें तो इतनी एनर्जी है कि आपको किसी चीज़ में ना मिले। तो इसके कुछ हकूक हैं। हकूक कुरान के क्या हैं? कुरान का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम इसको समझ कर पढ़ें, तरतील के साथ पढ़ें और इस पर अमल करें और इसको दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आप कहते हैं ये बड़ी मुश्किल किताब है, तो नहीं। देखिए जिसको अल्लाह आसान कह दे वो मुश्किल नहीं हो सकती, और जो बनाता है वही जानता है। सूरत कमर आयत 54, और बार बार इस जुमले को दोहराया गया, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। और हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, फिर है कोई जो नसीहत कबूल करने वाला हो? तो क्या पता चला कि आप और मैं इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं? अल्लाह ताला इस कुरान का हक अदा करने वाला बना दे। चलिए अगली कुंजी पे चलते हैं, रिस्क की 12वीं कुंजी, एहसान करना। दूसरों पर एहसान कीजिए। आप कहते हैं कि क्यों? मैं कहती हूं कि इसकी वजह से रिस्क आएगा। आपका हक बनता है कि आप मुझसे दलील मांगिए, क्योंकि दलील के बगैर बात नहीं लेनी। तो रिस्क के असबाब में एक है एहसान करना। पहली बात यह कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इसको सूरत नहल आयत 30 में, बस इसी को ही समझ जाएंगे तो बाकी बात तो वाज़े है। लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसनतुम वलदारुल आखिरति खैरुम वलनिमा दारुल मुत्तकीन। जिन लोगों ने एहसान किया इनके लिए दुनिया में हसना है और अलबत्ता आखरत का घर तो यकीनन कहीं बेहतर है, और वो बेशक मुत्तकियों का घर अच्छा है। तो तो क्या पता चला, नेक्स्ट पे चलिए, कि जो लोग एहसान की रविश इख्तियार करेंगे, और एहसान क्या होता है, किसको एहसान कहते हैं, तो इसको दो तरह से समझिएगा, एक है बंदों के मामले में एहसान और एक है अल्लाह के इस मामले में एहसान। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने एहसान किया इनके लिए इस दुनिया में हसना है और आखिरत का घर तो यकीनन कहीं बेहतर है। तो एहसान से मुराद क्या है, नोट कीजिएगा, अल्लाह ताला के तमाम अहकाम की तामील करने का नाम एहसान है। वो अहकाम चाहे बंदे की अपनी जात से मुतल्लिक हो या दूसरे लोगों के बारे में। बात वाज़ेह, आसान कर देती हूँ, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को अहसन दर्जे पे अदा करने का नाम एहसान है। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह, जो बहुत ही प्यारी हस्ती गुजर गई, फरमाते हैं, इस मुकाम पर एहसान से मुराद हुक्म को बजा लाना है, खा वो लोगों की तरफ से एहसान की शक्ल में हो या अपने नफ्स की जानिब से। बात वाज़ेह, जो काम करें अच्छे तरीके से करें। अल्लाह के मामले में एहसान क्या है, कान कतराहू, गोया के ऐसे नमाज पढ़ो कि अल्लाह को देख रहे हो। बंदों के मामले में एहसान क्या है, उनकी उम्मीदों से ज्यादा दो, और वो तुम्हारा हक नहीं देते, तुम देते रहो, ये है एहसान। अब बताइए, ऐसे बंदे को कौन पीछे करे। अब सवाल पैदा होता है, दुनिया में हसना का जिक्र आया आयत में, तो इससे क्या मुराद है? अलामा जमख्शरी कहते हैं कि हसना इनके एहसान के बदले में दुनिया में इनका सिला है और आखरत में इन्हीं के लिए इससे बेहतर बदला है। यानी एहसान के साथ जियेंगे तो दुनिया में भी सिला मिलेगा और आखरत में और भी मिलेगा। शेख सादी कहते हैं कि कुशादा रिस्क, ये है हसना, पुरलुत्फ जिंदगी, ये भी है हसना, दिल का इत्मीनान, अमन और शादमानी, दिल चाहता है ये चारों चीजें आपको मुझे मिल जाए, तो हसना है ये। इसके लिए फिर एहसान कीजिए, मोहसिन बने, अल्लाह के साथ इबादात बेहतर करते जाएं और बंदों के साथ मामलात खूबसूरत करते जाएं। इस तरह इब्ने आशूर कहते हैं कि हसनत तो दुनिया क्या है, वो पाकीज़ा जिंदगी, हयातन तैयबा, हम और इसके अलावा ईमान की नेमत के साथ अल्लाह ताला की अता करदा दुनियावी जिंदगी की जीनत। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की ये नेमतें दें। और एक और रेफरेंस ले लीजिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम जो है ना, ये हमारी करेक्टर बिल्डिंग के लिए। कुरान पाक में ऐसी बहुत खूबसूरत आयात हैं जिनको पढ़ने के बाद, जिस पे गौर व फिक्र करने के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली जरूर आती है। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ, इधर उधर की चीज़ों को पीछे करके एक दफ़ा कुरान तो पूरा कीजिए, फिर बाकी काम करेंगे। क्योंकि जिसने कुरान समझा ही नहीं है उसको और क्या मिलेगा। और ये चार चीजें जो भी बताई है ना, रिस्क उन वासियुन वईशतुन हनीयतुन वतुमा नीनतु कल्बिन व अमन व सुरूरुन, इसको दिल से लिख लें, कुशादा रिस्क, पुरलुत्फ जिंदगी, दिल का इत्मीनान, अमन और शादमान, ये आज लग्जरीज ऑफ लाइफ जिसको लोग मांगते हैं, चीजें आ जाती हैं, ये लग्जरीज नहीं आती। तो अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे। तो अगला रेफरेंस है सूरत जुमर आयत नंबर 10, قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة, कह दीजिए कि मेरे बंदो जो ईमान ले आए हो, अपने रब से डरो, अल्लाह आपको मुझे अपना डर दे दे, जिन लोगों ने एहसान किया उनके लिए इस दुनिया में हसना है। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला, कि जो लोग अपने रब्बे करीम और बंदों के हकूक, यानी हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद से मुतल्लिक सब अहकाम को मानते हैं, यानी कि अपनी मर्जी के, पिक एंड चूज नहीं है दीन में, अफतू में नू ना भी बाद दिल किताब तक फुरू ना भी बात नहीं, सारे अहकाम माने। आपका बच्चा आपकी एक बात माने, दो ना माने, फिर तीसरी माने, चौथी ना माने, तो खुश है नहीं? आप कहते जिस तरह भी मान रहे सारी बातें माने। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को आखिरत से पहले दुनिया में कुशादा रिस्क, पुरलुत्फ जिंदगी, इत्मीनान कल्ब और अमन और शादमानी देते हैं। इसी को हसना कहा गया है। और याद रखिए कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अला इन वाद अल्लाह ही हक्कुम वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, खूब जान लो कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सूरत यूनुस आयत 55 की इस बात पे हम अपने आज के इस सेशन को पूरा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें आसन दर्जे पे जीने वाला बनाए, और हम अल्लाह के डर से बंदों के भी हक अदा करें और अल्लाह के भी करें, احسان دین اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ تمام تر حالات اور معاملات میں احسان اختیار کیجئے۔ سورۃ نحل 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان سارے معاملات میں سرخرو کر دے قیامت کے دن۔ اور ان اللہ یحب المحسنین، اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا۔ چند باتیں صرف بونس کے لیے، ایک دو منٹ میں۔ احسان کے فوائد کیا ہیں؟ احسان کرنے والے ہی اللہ کی محبت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ احسان کرنے والے ہی اللہ کی معیت، یعنی اللہ کا ساتھ ہے نا، ملتا، اور اس کی نگہبانی، عنایت اور رحمت اور لطف و کرم کی سعادت پاتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا اور آخرت میں نعمتیں پانے والے ہوں گے۔ یاد رکھو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا، لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ تو رزق کے طلبگاروں کو چاہیے کہ وہ خوب ذوق اور شوق اور پورے اہتمام سے رب کریم کے تمام احکامات کی تعمیل کے لیے سر توڑ جدوجہد اور سعی اور کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی فیملیز کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ عافیت سے دنیا سے گزر جائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔